दास जी, रामचंद्र दास, रामचंद्र ठाकरे छोटे भाई थे। रामचंद्र खान धर्म वैष्णव, सिद्ध वैष्णव और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। इन्होंने अपने भाई को बहुत चेष्टा की कि यह राधा कृष्ण का भजन करें, किंतु वो दुर्गा जी की पूजा करता था, काली जी की, और मद्यमान इत्यादि सब खाता था, किसी तरह से सुनता नहीं था। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ा, ऐसा बीमार जब मरेगा ही, दुबला पतला एकदम हो गया और मरने वाला ही था। मैंने कहा जी आप तो मरेगा नहीं, सारी चेष्टा करके देख ली, तुम अब बचेगा नहीं, हमारे कहने से तुम गोविंद का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, राधा कृष्ण की उपासना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा तो जरूर तुम ठीक हो जाएगा। तुम काली से अपनी जितनी शक्ति है उसे मनवा लो। हमने सारी चेष्टा कर ली, अब उनसे नहीं होगा, ऐसा ठीक, तुम ऐसा करो। बस उनको काजी से अब से तुम हरिनाम करेगा कहाँ करें, संकल्प कर लो, इसके बाद में देखा जाए करेंगे। मांस मछली मदिरा ये सब तो नहीं लेगा, तो नहीं लेंगे, ठीक है, तुम हरे कृष्ण उनको बता दिया करो, और श्रीनिवास जी से फिर तुमको या किसी वैष्णव से हम तुम्हें दीक्षा दिला करके। उन्होंने कहा कि आप ही हमारे गुरु, तो ठीक, बस उनको मंत्र दिया, महामंत्र का और गोपाल मंत्र इत्यादि दिए, और लेते के साथ ही दूसरे दिन से एकदम ठीक होने लगे। चार पांच दिन के अंदर में एकदम ठीक हो गए। पासी में गंगा जी की बहती हुई, कहे चलो हमारे साथ में स्नान करने के लिए, बस स्नान कर। अब उनको पूर्ण विश्वास, बहुत ही सुंदर अलंकृत भाषा में पद्य इत्यादि लिखते थे। उन्होंने कहा कि अब तुम भगवान के ऊपर कुछ रचना करो। तो उन्होंने सबसे पहला जो पद रचना किया यही, भज गुरे मनुष्य मन, दूसरों को कह रहे हमने तो इसका फल देखा, अब तुम करो। और जब लिखा गया तो उन्होंने, उनके बड़े भैया ने, रामचंद्र खां ने, उनके द्वारा जीव गोस्वामी कृष्ण वैष्णव राज्यसभा के जो पात्र से बड़े, उनके पास में भेजवाया गया, और उन्होंने देख करके वो बड़े प्रसन्न हुए और उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि ऐसी नई नई रचनाएं करके राधा कृष्ण की तुम सेवा करो, हमारा आशीर्वाद। तब से वो वैष्णव कवियों में परमश्रेष्ठ कवि हुए। हमको ऊंचा सुनते दिव्या इसको ऐसा नहीं, ऊंचा इसके बाद नहीं हुआ, यदि गिर जाएंगे तब से। तो तब से रचना करने और जीव गोस्वामी के पास से भेजा जाने लगा, बहुत सी रचनाएं थी, अष्टकाली लीलाओं में भी उनके अनुवाद है उन्होंने किया, जो हमारे रूप गोस्वामी ने पद्यों में किया उसका भाव सबकी करके ये करने लगते। फिर तो उनका चारों तरफ में वैष्णव में नाम, उनकी रचित बहुत सी पदावलियां हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए इसको संसार में गाने से नहीं होगा, भज हुए मन, माने क्या इसका अर्थ समझो, हे मन, मन को कहो भज हुए मन, साधन की समाप्ति के बाद में तो ये भजन आरंभ होता है, अभी भजन के लिए लालसा करो। ये धन जन पुत्र पौर ये सब तो कमल जल जल जीवन टलम, आज है कल नहीं है, पानी की बूंद कमल के पत्तों पर जैसे कि थोड़ी सी हवा की झोंकी आ जाए तो वो मिल जाता है, ऐसे ये जीवन तो भी आदमी नहीं करता है। आप इतने आदमी इस सब विषय में लड़ते हैं कि संन्यास और ब्रह्मचारी होने पर भी विषय नहीं लगते। यदि कंबल का एक एक लोम यदि निकाल दिया जाए तो कंबल में क्या रहेगा, खुश नहीं रहेगा। ऐसे ही यदि हम लोग सूफियों को धरे हैं वैष्णव लोग तो कोई भी नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जैसे भगवान ने ये शरीर देकर के हमारे मन भावों को छिपा करके रखा है, ऐसे गुरु और वैष्णव भी हमको ढक करके हमारे शरीर की और भावनाओं को रखते हैं, नहीं तो आज ही यहाँ से निकल जाए। इसलिए जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को समझ करके, बहुत से ऐसे लोग हैं पाश्चात्य ढंग से भजन करना चाहते, वो कभी जीवन में नहीं होगा भाई, ये समझ रखो। उनकी नकल हमको नहीं करना है, जिसे नकल करेगा मरेगा। ये कपड़े ये लाल रंग से मत रखो, ठीक शुद्ध वो जो हम लोगों का होता है वो क्या रहो, गेंद से करो, उसमें शक्ति समर्थ है, पवित्र चीज है। आजकल का जो इन्वेंशन हुआ है पाश्चात्य देश के लाल रंग से, उसे तुम्हारी कामना बांसना पड़ेगी और उसको चौपट कर देगी। खबरदारी ये चीज सीखो, उनकी कोई चीज कैसेट और ये सब जो चीजें आती हैं वो मत लो, उनकी आमदनी का कोई भी चीज मत लो, उनको भक्ति से कोई संबंध नहीं है। वो तो गए थे बचाने के लिए, लोगों को पैसे बचा करके लाया जाए, उनको कुछ हम लोगों के साथियों के हृदय में वो नस नस में वो है भजन। इसलिए किसी का अनुकरण करने की जरूरत, घड़ी बांध करके चलेंगे दिखलाते हुए, ये मत चलो। ये छोटी छोटी चीजों को समझो, दम्भाभिमान पाखंड और अहंकार, जब मैं कुछ हो गया सी सुनू सी हो भाई, ये सब छोड़ो। सीधे सादे रह करके हमारे गुरुवर्गों का जैसा था, हमारे गुरुवर्ग को भी देखो, पवन महाराज जी को देखो कैसे रहते हैं, घड़ी ओड़ी बांध करके चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम लोग, घड़ी बांध करके चलते हैं। इसे भजन में चाहता इसे देखाओ मत, सीधा साधा रह करके हमारे वो है ना एक क्या अनुवृत्ति उपदेशामृत वाला नहीं, सतोवृत्ति। सतोवृत्ति का तात्पर्य समझो तो भाई, पढ़ने से क्यों नहीं हो, सतोवृत्ति का समझो। सतोवृत्ति माने क्या, हमारे पूर्वापार जो आचार्य हो गए जिनका निर्वाह करने के लिए जिन वृत्तियों का अवलंबन किया उसे अधिक मत करो। इस समय हमारे कोई गृहस्थ भक्त थे, वो सन्यासी हुए, उन्होंने कहा कि महाराज जी एक साबन का कारखाना हम लोग लगा दें और कपड़े धुलने के लिए सांस लगा दें, कि ये ब्रह्मचारियों को भिक्षा जाने की जरूरत नहीं होगी, बड़े आराम से दिन कट जाएगा और भजन कर सकेंगे, नहीं तो भिक्षा मांगने के लिए दरअसल जाना पड़ता है। गुरु जी ने कहा कि खबरदार मत ऐसा करना, खबरदार ऐसा मत करना, भिक्षा मांग करके भजन करो, अधिक भिक्षा मत करो, जितना जरूरत है उतना ही कर, अधिक मत जाओ। और उसके लिए गृहस्थों की ताबेदारी मत करो, ताबेदारी माने क्या, दो चार मिल गया कोई उनको लेकर के घुमाने के लिए चले गए और घुमा करके कुछ रख, विद्यापुर जी को भी वही नहीं दिया। ये भजन के विपरीत वैष्णव का सेवा अनुगत तब ये भजन, तब तक फिर इन चीजों को जो यहाँ पर अनुशीलन हो रहा है ऐसा कहीं नहीं है भाई। ये समझ लो जगत में बहुत रेयर ऐसे सभाएं होती हैं और इनमें ये सब चीजें हम लोग अनुशीलन, हम लोग केवल एक आशा रखेंगे कृष्ण की भक्ति हमको बढ़े, तब तक ये ठीक होगा। आज जहां संसार की कोई चीज हम संग्रह करेंगे ये अन्ना विलासिता में आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। इन श्लोकों को समझ करके भगवत भक्ति में हम लोग चले, चित्त चंचल नहीं होगा, अन्य चंचल होने के लिए बात है। इन सब चीजों को सुनते हुए आज अभिन्न कृष्ण कलेवर संदनी शक्ति के अधिष्ठात्री देव श्री बलदेव जी का आविर्भाव तिथि, आज श्रीमती राधिका जी किशोरी जी आज झूलन पर पधारेंगे, कल बंद हो जाएंगे। झूलन एक ऐसा महोत्सव है कि उन कृष्ण की सारी आकांक्षाएं उसमें पूर्ण होती है, जिसको बंसी नहीं कर सकते, जिसको फूक नहीं कर सकते, जिसको सुबल इत्यादि सिद्धांगी नहीं करा सकते, वो ये लीला राधा कृष्ण के मिलन में संपन्न कराती है। ये सबसे गूढ़ लीलाएं हैं दुल्हन की। स्मर गृहम अभिशंतिम बाम्य तो उधान। राधा जी कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं और राधा जी ने देखा जब निकट आ गई तो वहां से लौट करके घर अपने कुंड में चले। लक्ष्मण आते हैं नहीं मानती, फिर मानती, किंतु जिसके लिए कृष्ण ललकते हैं झूलन में अपने आप वो चीज होता है। जहां जोर से झूलाया बस राधा जी जो उसे पकड़, अंगू पंगू क्या है श्याम के अंगू पंगू, राधा जी कट लिए हुए श्याम के अंगू पंगू, राधा जी ने अंगू पंगू मैंने क्या अंग प्रत्यंग को श्रीमती राधिका जी ने ऐसे पकड़ करके पा। ये कृष्ण कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, लाख चेष्टा करने पर भी ये चीजें नहीं। कहना तो नहीं चाहिए हमको, किंतु कह रहे हैं कि ऐसी ये कभी ऊपर ले जा रहे हैं, झुलाने की जरूरत नहीं होती, बैलेंस होता है कृष्ण, ऐसा बैलेंस कृष्ण का है। पहले तो झुलाया सब क्यों ने, इसके बाद में ऐसे बैलेंस किया, बैलेंस धीरे 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 बढ़ते 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 एकदम ऊपर अपने आप। उसमें राधा जी से संकित होकर क्या करती है, कपड़े इधर उड़ रहे, कपड़ों को दबाने की चेष्टा करती है, अपना कुछ बस नहीं चलता, अंत में पकड़। ये सब ऐसी रसमयी लीलाएं, इसलिए साधारण लोग न समझें, छिप करके हमारे गुस्से में ग्रंथों में इसका ये सब वर्णन किया है। साधारण लोगों के लिए नहीं, ये बहुत उन्नत जो वैष्णव है उन लोगों के लिए है। इसलिए झूलन लीला ऐसे साधारण नहीं है, इसलिए हमारे गोस्वामी ने भी बहुत बारीकी से जैसे लोग समझ न सके, जिसको क्या कहते हैं गोपन करके बोलना, अवहिता से उन्होंने लिखा है। केव बुझे मूढ़ जन रसिक केवल समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। एक न एक दिन जब तक ये सब चीजों की भावना नहीं हृदय में आएगी, हम लोग भविष्य में कभी परिपक्व नहीं होंगे। इसलिए पहले साधन भक्ति के अंगों को हमको अच्छी तरह से पालन करना है, और आते आते यदि भगवान की कृपा हुई ऐसी कथाओं को सुनने के बाद में यदि लोभ उत्पन्न हुआ तो समझो कि हमारे कोटि जन्म हमारे सफल हो गए। तब तब इन लीलाओं में अधिकार, सभी लोग प्रचलित ये झूले सब जगह लगते हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं वृंदावन में जहां पर झूले नहीं लगते। अरे यहां तक कि द्वारका जी को, द्वारकाधीश को लोग झूले पर बैठाते हैं। किसके साथ में बैठाते हैं हमको पता नहीं, रुक्मिणी के साथ में बैठाते हैं ना, सत्यभामा जी के साथ में न, कुब्जा जी के साथ में, मथुरा में तो कुब्जा ही होगी, वहां पर झूला बैठती है ना। कृष्ण किसके साथ में बैठते हैं, और वहां पर जो बैठते हैं मथुरा में झूले पर, तो वो मुकुट पहन करके करते हैं ना, ये मोर पंख यहाँ लगाते हैं, बांसुरी होती है या नहीं मैं तो ये कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि रामचंद्र जी को भी झूला झला देते हैं, क्योंकि ब्रज में ये देखते हैं तो उनको भी लालसाते हैं कि हमारे रामचंद्र जी भी, तो वह उनके साथ में कौन झूलेगी, सीता जी उनके साथ में झूला झूलेगी कि नहीं। हजार रामचंद्र जी कहेंगे सीता जी नहीं मानेंगे, और सीता जी हजार कहेंगे रामचंद्र जी, मर्यादा भंग हो जाएगा, उसको झुलाएगा कौन, कौन झुलाएगा, बड़ा मुश्किल। हाँ एकांत घर में कहीं बैठ करके सीढ़ी पर, जैसे गृहस्थ लोग झूलते हैं अकेले अकेले झूल ले, और संभव पर नहीं। तो इसलिए आज झूलन समाप्त होने पर गोपियों का मन खराब हो जाता है, इसलिए कृष्ण ही बलदेव जी के प्रभु में के रूप में आए हैं, ये समझ लेना चाहिए। कि आज हम लोग गौड़ीय वैष्णव लोग जीव गोस्वामी के विचार के अनुसार में बलदेव जी का जन्म आज मनाते हैं पूर्णिमा से, और नहीं तो सारे संप्रदायों में साधारण लोग बलदेव छठ जो कृष्ण जन्म के बाद में जुट जाती है, राधाष्टमी से दो दिन उसमें भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के तक, क्योंकि ऐसा भरत संहिता में लिखा गया है, ऐसा ठीक है, गलती तो नहीं है, ये किसी कल्प भेद हरि कथा सुहाव, कल्प के भेद से ऐसा हो सकता है, तो कभी ऐसा हुआ होगा, किंतु साधारण तरह से बलदेव और कृष्ण दोनों का जन्म केवल 8 दिन का अंतर है। गोपाल चंपू में इंगित किया है जी गोस्वामी, और वहीं पर उन्होंने व्यक्त बताया है पूर्णेंदु के समय में, पूर्णेंदु कब होती है, पूर्णिमा के दिन, जन्माष्टमी से 8-7 दिन पहले किया, उसी समय बलदेव जी का आविर्भाव हुआ। कैसे हुआ, पहले देवकी जी और रोहिणी जब मथुरा में थी, दोनों को गर्भ हुआ एक साथ। कैसे गर्भ हुआ, स्त्री पुरुष के व्यवहार से नहीं, बस बेटी ने अपने मुख से मंत्र के प्रभाव से उनके कान में भगवान को दिया, और कृष्ण उसके द्वारा भीतर गए। ऐसे बलदेव जी भी बसदेव जी ने देवी और उन्होंने दोनों को मंत्र ब्रह्म के रूप में उनको दिया, और उसके द्वारा दोनों गर्भवती हुई, और देने के बाद में अरुणी जी को भेज दिया गोकुल में, कंस का अत्याचार होने की संभावना थी, बच्चा पैदा हो मारेगा इसलिए भेज दिया, घोड़ी पर चढ़ करके गई दोनों को गर्भ। छठे महीने में इनका गर्भस्राव हुआ, देवी जी का गर्भस्राव नहीं हुआ, जोग माया ने इनको निकालकर और उनके गर्भ में रोहिणी जी के गर्भ में दिया। रोहिणी जी के गर्भ में देने का वहां से बलदेव जी पहले से परिपूर्ण रूप में है ब्रज वाले, मूल संकर्षण नहीं, मूल संकर्षण के भी जो मूल हैं वो बलदेव प्रभु जी वहां है, और इधर वासुदेव जो बलदेव जी थे उनके अंश इनको रोहिणी कुंड ने योग माया जी ने उनको निकालकर और गोकुल में ले जाकर रोहिणी जी के दर्श में जो बलदेव जी थे वहां पर रख दिया, ये दोनों मिलकर के एक वो इनका अंश कुंड में मिलकर के पूर्ण हो गया। जैसे कि वासुदेव कृष्ण यशोदा कृष्ण या आनंद के कृष्ण में वो मिल गए, चतुर्भुज मिले हैं वहां पर, इसी तरह से ये बलदेव प्रभु जी अपने पूर्ण अंश में मिलकर के वहां पर, इसलिए 6 महीना में ये तो हुआ कि ये कर्म इनका स्राव हो गया, और 6 महीने में वो दोनों मिलकर के, रोहिणी जी ने 14 महीने के बाद में गर्भ से वो पैदा रोहिणी के गर्भ, और इधर जो यशोदा जी वहां थी तो जिस समय उनका गर्भ का स्राव हुआ देवकी का, उसके थोड़े दिन के बाद में नंद बाबा ने मंत्र के माध्यम से उनको कृष्ण को उनके हृदय में दिया, करीब करीब 2-4 दिन का अंतर यशोदा जी ने कहा कि हमने स्वप्न देखा गोपाल चंपू की बात, कि हमारे हृदय में कोई एक बच्चा है, उन्होंने कहा कि हाँ हमने भी ऐसा देखा। अब 6 महीने के बाद में, तो मैंने 8 महीना बाद, इधर का 6 महीना गया और उधर में 8 महीना, बलदेव जी का इस पूर्णिमा के दिन में जिनका 14 वर्ष महीना पूरा होता है उस दिन उनका आविर्भाव। और कृष्ण का कितना हुआ? उनका भी 8वें महीने में, 8वें महीने उनका भी गर्भ पूरा नहीं होने के बीच में उनका भी आविर्भाव हुआ। यदि ऐसा नहीं हुआ होता 8 दिन के अंतर से, तो 11.5 महीने यदि बलदेव जी बड़े होते हैं तो एक साथ में उनका नामकरण कभी भी संभव नहीं था, एक साथ में कुटुंबों पर चलना यह संभव पर नहीं था। यदि ऐसी बात होता तो एक वर्ष तक बलदेव जी कहाँ रहे कहाँ? ब्रज में ही तो रहेंगे कहीं? ऐसा नहीं, बलदेव जी केवल 7 दिन तक प्रतीक्षा किया कृष्ण का। जब कृष्ण वहां पर प्रकट हुए नामकरण के समय में यशोदा जी अपने बालक को और अरुणी जी अपने बालक को एक पलंग पर सुना ले आई नामकरण के लिए, और बलदेव जी ने उस समय में आंख खोली पहली बार जब दोनों को एक साथ मिला। बलदेव जी देख करके आश्चर्यचकित होकर के बड़े प्रेम के साथ में छोटे कन्हैया को अंक में भर लिया, और कृष्ण ने भी इसके बाद में नाम। ये तो संगत लगता है जीव गोस्वामी का विचार। और एक महीने यदि बड़े होते हैं बलदेव प्रभु जी से बरस, तो एक वर्ष में बच्चा कुछ खाने लगता है, चलने लगता है, केवल हाथों पर नहीं, एक वर्ष में लड़का अपने पैरों पर भी खड़ा होने लगता है, तो फिर घुटनों पर कैसे चले? बलदेव जी, जो बच्चा चलने लगता है वो घुटनों पर नहीं चलता, इसलिए ये कभी भी संभव पर नहीं है। ये नर लीला है, इसलिए हमारे जीव गोस्वामी ने सुंदर विचार, आप उसमें अधिक अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आप लोगों को खुशी होगी। इसलिए जीव गोस्वामी का यह विचार समाज में है, इसलिए हमारे संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं इस विचार को अनुसरण करते हैं, और इसी के अनुसार में हमारे गौड़ीय संप्रदाय में वो बलदेव छत को न लेकर के वो साधारण लोगों के लिए, हम लोगों के लिए आज का दिन बलदेव जी का आविर्भाव। इसलिए ये भी कारण है आज काल आता है अनंत, आज की तुलना है ना राखी बंधन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन माने पहले ये सब राखी ऐसे नहीं बनती थी, अनंत होता था। अभी भी कहीं कहीं का प्रचलन है अनंत का, ये अनंत कौन है? ये यदि रक्षा नहीं करे ना जगत में कोई रक्षा नहीं करता। ये बल के अधिष्ठात्री देव है, कृष्ण सच्चिदानंद तत्व है, सच्चिद किंतु कृष्ण है इस शक्ति के अधिष्ठात्री देव। बदंति तत्व विदत् तत्व जग ज्ञान, ज्ञान मने केवल कृष्ण की शक्ति का अधिष्ठात्री है। बलदेव जी संदिनी के और श्रीमती राधिका जी विलादिनी की, ये तीनों एक ही हैं, इसलिए सच्चिदानंद थे। इसमें दोनों को अलग से निकालो तो सच्चिदानंद कृष्ण नहीं रहेंगे, केवल चित शक्ति रहेंगे, इसलिए तीनों मिलकर के कभी अलग नहीं होते, एक ही हैं कृष्ण सच्चिदानंद। उनमें से अपने चित शक्ति का अधिष्ठात्री बना दिया राधिका जी को, और अपने ही निकल करके संदिनी की शक्ति के रूप अधिष्ठात्री के रूप में बलदेव जी के रूप में। इसलिए कृष्ण से बलदेव भिन्न नहीं है, और उधर राधिका जी भी कृष्ण से भिन्न नहीं है, अभिन्न सभी हैं कि किंतु लीला विलास के लिए अलग। राधा राधा प्रणय विकृति लाडली शक्ति स्मात एक आत्मा गो पुरा देभेदम बदौतौ चैतन्याख्या प्रकट मधुना तत्वयं चमाप्तम राधा भाव सबितम नौ कृष्ण। मैं अभी तक कुछ नहीं बोलना चाहता, ये सब लोग बोलेंगे। सबसे पहले श्रीमान हमारे सुबल सखा ब्रह्मचारी जी रूप गोस्वामी के वैशिष्ट पर ही आज बोले, और इसके बाद में और सब ब्रह्मचारी लोग और वक्ता लोग बोलेंगे बलदेव जी के संबंध में, बलदेव सप्तक के संबंध में। आ जाओ, परस्पर विचारों का दिन में ये होता है, उसमें भक्ति उसकी वृद्धि होती है, सवा सोसाइटी से नहीं। इसलिए हम लोगों की कल परसों से जो चल रही है ये ईस्टर की गोष्ठी है। बहुत सुंदर सुंदर विचार सब हो रहे हैं। रात को हो गई है तभी मैं दो एक बात कहूंगा। पहले तो इस श्लोक का क्या तात्पर्य है। संकर्षण कारण तोयसाई गर्भोदशाई उपयोगिशाई शेषस्थ जस्यांत कला सनित्यानंदाक्षराम नित्यानंद जिनका नाम है वो राम है। नित्यानंदाक्ष राम राम मैंने बलदेव ये ठीक है ना। उनके अंत और कोई कला है कौन जैसे श्लोक में बतलाए संकर्षण कारण तोयसाई गर्भोदशाई पयोदशाई इसमें कौन सा अंश है और कौन सा कला है। अंश के अंश को यह सब कला कहा जाए तो इसमें अंश कौन सा हुआ विचार करो। नित्यानंद और राम एक हैं क्योंकि आगे ये बतलाएगा और ये नित्यानंद या राम प्रभु इनका अंश कौन है संकर्षण इसलिए दोनों एक नहीं है भाई। इस चीज को खूब अच्छी तरह से एक ही तत्वतः एक ही है यहाँ तक कि अनंत से लेकर के बलदेव तक अनंत तत्वतः एक है। ये सभी कृष्ण तत्व हैं किंतु जब वैशिष्ट्य देखा जाता है वैशिष्ट्य हमारा जखन विचार करी तखन ये सब बोले विचार संकर्षण आराम एक न सततः एक किंतु विलासवत एटा पाप। जब ब्रज में रहेंगे एक उदाहरण के द्वारा तुम लोग समझो। कृष्ण और बलदेव को नंद गांव से ला रहे हैं अक्रूर। जब ब्रह्मरथ में पहुंचे जो वृंदावन और मथुरा की सीमा तो वो अंध करने के लिए ब्रह्मरथ में स्नान करने गए तो उन्होंने क्या देखा अंदर में देखा और फिर देखा जिससे दोनों वहीं पर टीकाओं के अनुसार में ऐसा जाना जाता है कि वहीं पर स्नान करते समय उनको वंचित करके अक्रूर जी को कृष्ण और बलदेव जी जो ब्रज वाले थे बंसीधारी मर्मकूट त्रिभंग ललित जो नरलीला करने वाले ये जो कृष्ण यशोदा नंदन और रोहिणी नंदन राम ये दोनों वहीं से लौट गए। पढ़ा है ऐसा कहीं है ना तो लौट गए। तो यहाँ पर कौन आए कृष्ण कौन आए वासुदेव कृष्ण और उनके साथ में बलदेव जी आए तो ये कौन है हल मुसल वाले आए वो सिंगा बजाने वाले वेणु बजाने वाले वस्त्र धारण करने वाले गैयों के पीछे खींचते और कन्हैया के भैया नहीं आए वो लोग तो वहीं पर रह गए ठीक है। इसलिए संकर्षण जो है मूल संकर्षण भी बलदेव जी के अंश है इसलिए उनको अंश कहा गया। और कला कौन है अंश के अंश और भी अंश के अंश जीतने चले जाएंगे और कला से क्या कुछ कहा जाए इसलिए ये सब कला है। कौन कला है अच्छा संकर्षण भी दो हैं मूल संकर्षण और मूल संकर्षण मथुरा और द्वारका में कार्य करते हैं वृंदावन में उनका कार्य नहीं वहाँ पर तो स्वयं राम है स्वयं रूप राम बलराम इसलिए दोनों का एकाकार मत करो। इनका विलासगत वैचित्र और वैशिष्ट्य है इसलिए जहाँ हल मुसल धारण करने वाले देवकी के गर्भ से संभूत या उनके गर्भ में रहने वाले ये नित्यानंद अथवा राम जो हैं बलदेव उनके ये अंश हैं। इसलिए ये बलदेव जी जो हैं द्वारका वाले या मथुरा वाले ये हल मुसल को धारण करते हैं। जब गर्दभासुर को मारा तो हलमुसल से नहीं मारा, स्वाभाविक जैसे कृष्ण कंस को भी मारा तो हलमुसल से और अपने उन अस्त्रों से, तभी ये वासुदेव कृष्ण मारे मारते हैं। कृष्ण अपने नराकृति में रह करके समस्त लीलाओं को करते हैं, बलदेव जी भी वैसे ही करते हैं। इसलिए इस श्लोक में जो बतलाया गया संकर्षण, ये मूल संकर्षण और दूसरे महासंकर्षण, इन दोनों के लिए ये अंश हैं। और जगत संबंधी ये जो कारणाभिशायी विष्णु गर्भदशायी और क्षीरोदशायी, ये जगत संबंधी हैं, ये नित्य स्वरूप नहीं है। स्वयं नित्य होने पर भी ये प्रकृति के संपर्क से है ये, इसलिए ये लोग का नाम और गुण क्रिया ये गुण है। और इससे अतीत जो वैकुंठ से जो आरंभ होते हैं वो लोग इनसे अधोक्षत बल के तत्व है। इसलिए बलदेव जी जो ब्रज में रोहिणी के गर्भ से संभूत हुए वो मूल राम है या बलदेव जी, और उनके अंश संकर्षण जो इधर में रहने वाले, इन पर विशेष रूप से विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हम लोग तत्व से विचार करके विशेष रूप में इन चीजों को अनुधावन करेंगे, बलदेव प्रभु में और संकर्षण में, मूल संकर्षण में क्या वैशिष्ट है, अंतर नहीं है, भेद नहीं है, वैशिष्ट और भेद में अंतर होता है। एक ही चीज में, एक ही में रहने पर भी दो आंख एक शरीर के अंतर्गत में है, किंतु दोनों में आंखें बाएं और दाहिना का वैशिष्ट है। इसलिए एक स्वरूप में रहते हुए भी उनके अंदर में जो भेद सा दिखता है किंतु भेद नहीं है, उसको कहते हैं वैशिष्ट। और भेद किसको कहते हैं? स्वयं स्वतंत्र जिनकी सत्ता है, स्वतंत्र सत्ताशील वस्तुओं में भेद होता है, स्वतंत्र सिद्ध सत्ताशील वस्तुओं में यह भेद होता है। इसलिए हम लोगों में भेद कहीं नहीं है, स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद से रही हमारे कृष्ण है, अद्वैत ज्ञान परतत्व है। इन सब चीजों को विशेष रूप से समझना चाहिए। बलदेव जी के प्रभु जी के संबंध में बहुत सुंदर आलोचना हुई हमारे इसमें, रूप गोस्वामी के संबंध में हम लोगों को तीन चार चार दिनों तक बहुत सुंदर रूप में इष्ट गोष्ठी हुई, बहुत से नए नए तत्व सब प्रकाश में आए। यही तो गड़बड़ है, इसलिए प्रभु जी ने ड्रम बजा दिया, उनको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कर तत्व ही ज्ञान। जहाँ पर राधा जी के साथ में कृष्ण रहेंगे वहाँ पर गोपियों का अतिरिक्त बलदेव प्रभु भी नहीं रहेंगे, यदि रहना है तो अनंग मंजरी के रूप में रह, अन्यथा वो बलदेव रूप में नहीं रह सकते हैं। ये रसाभास, रसाभास भी नहीं है, ये तो रस दुष्ट है, रस दुष्ट, रस का विरोधी है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है, भक्ति रसा में सिंधु का अनुशीलन नहीं किया, इसलिए ऐसा सब करता है। एक बात और, वो आजकल लिखे थे, आजकल और सिद्धांत विरोधी सब बोली कत बोली आछे, एरो कोनो ज्ञान नहीं, ओरा पैखाना करे जल शौच करते जाने ना, ओरा ही सब बोली लिखे। हाँ बतला रहा हूँ, एक इन्होंने एक थोड़ी सी बात बतलाई, बलदेव जी को क्रिया शक्ति का अधिष्ठात्री या कुछ ऐसा बतलाया। देखो तीन चीज है, संबित संधिनी लादी, इधर में फिर उसको कहा गया सत चीत, और उसी को बल ज्ञान क्रिया, और अब तीनों को अलग अलग करो। जो सत है वो संधिनी है, वो बल है, ये ठीक एक लाइन में है। अच्छा, अब संबित जो है वही चित है और वही ज्ञान है, और अब उधर चलो, लादिनी क्रिया और आनंद, उसको एक लाइन करो। इसलिए उधर राधा जी को रख लो तीनों, और इधर में बलदेव जी को रखो, अब विचार करके देखो ना। इसलिए क्रिया किसको कहेंगे? राधा जी की क्रिया, शक्ति मात्र की ही क्रिया होती है, शक्तिमान की क्रिया नहीं, उनकी केवल इच्छा शक्ति है। वो इच्छा करते हैं और क्रिया कौन करता है। जो कुछ जगत में पर जगत में जो कुछ हम देखते हैं ये क्रिया का अतत्व शक्ति का राधा जी का पराशक्ति का ये सब ये किया। कृष्ण का परिचय क्या, कोई परिचय नहीं दिखाई जाता, परिचय की सब उनकी इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति से ये क्रिया तीनों संबित संदिनी हलादिनी इत्यादि क्रियाएं करते हैं। इसलिए ये क्रिया जो है ये राधा शक्ति, यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत धारण हो रहा है ये कृष्ण नहीं धारण करते, ये कौन कर रहा है, ये राधा जी कर रही है। इसलिए बाएं अंग के बाएं हाथ के बाएं में ये राधिका जी है। हाँ ये ऐसा, इसलिए क्रियाएं जितनी भी हैं ये किसकी क्रिया है, ये जगत पर जगत वैकुंठ जगत जो कुछ है ये सब राधा जी के पराशक्ति के ये सब ये क्रिया है। तो आज रात अधिक हो गई, अभी ठाकुर जी के आरती हो और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जरूर वहाँ पर पधारें। ऐसे ही इष्ट गोष्ठी होगी और विचार सभा होगी और सब लोग मिल करके हम लोग करेंगे। तो हम लोगों का सप्तमी के दिन में उनका दोला निकलता है, तो दोला भी ऐसा है, दोला माने नगर संकीर्तन, उसमें सभी लोग आप रहेंगे। अब नाम लेकर के हमको बोलने की जरूरत नहीं है, आप भी रहेंगे, ये लोग भी रहेंगे, उधर सभी जितने आदमी हैं चाहे गृहस्थ भक्त हैं और त्यागी हैं सभी लोग आएंगे। ऐसा ही सुंदर परिवेश बना करके हम लोग मथुरा में भी ऐसे ही प्रचार करें। मथुरा में प्रचार हो रहा है किंतु इसी रूप में नगर संकीर्तन भी वैसे हो, विचार सभा भी ऐसी हो जिसमें साधकों को कुछ मिले, कुछ साधन भजन करने की उद्दीपना उनमें हो तब तो, नहीं तो फिर मठ मंदिर का कोई भी तात्पर्य, जो रोज रसगुल्ला का उत्सव हो रहा है, परमान्न का हो रहा है, फिर शरीर मोटा हो जाएगा, उसकी सेवा के लिए कुछ चाहिए कोई चाहिए ये सब। इसलिए इन सबको विचार करके आज हम लोग अपने इस सभा को स्थगित करते हैं और फिर कल हम लोग भोर में मथुरा में चले जाएंगे जन्माष्टमी के, और राधाष्टमी भी ऐसे ही होती है मथुरा में। हमारे यहाँ लट्ठी नहीं बजती है, लट्ठमार नहीं होती है, किसी का सोच चीज तोड़ना नहीं, ये लट्ठमार होली जो है ये गंवारों का है, गंवार जिसको कहते हैं वो लट्ठमार इधर उधर करते हैं। राधा जी की तो फुलझड़ी से रंगों से अबीर से उनकी शुद्ध प्रेम की होली होती है, अनुराग रंग से, लट्ठमार नहीं। आज लट्ठमार देखने के लिए जितने लट्ठबाज हैं जगत के वो सब उपस्थित होते हैं, कोई भी भक्त नहीं जाते। आज लट्ठमारी, हम लोग को ऐसा लट्ठमारी नहीं करेंगे, या नहीं था आजकल लट्ठमारी, मथुरा में भी लट्ठमारी होने लगी, जन्म में भी लट्ठमारी होने लगी, क्यों गंवार लोग हैं, बुद्धि विवेक है नहीं कुछ, तो ये लट्ठमारी लट्ठ किसी का सिर तोड़ेंगे क्या। कृष्ण लट्ठ से और राधा जी लट्ठ से मारामारी करती थी ये सब नहीं। इसलिए ये सब चीज़ों को बंद करके हम लोग उसी रूप में अनुशीलन करेंगे और भक्ति मार्ग में हम लोग प्रवेश करने की चेष्टा करें। महामंत्र पर तुम्हें घर उठा।